इब्राहिम लिंकन भी जॉक्स सुनते थे, पढ़ते थे और करते थे। जीवन में हास्य और विनोद भी बहुत जरूरी है। एकदम सदा काम काम नहीं, कभी थोड़ा फ्री गप सप लगा के भी खुश दिल रहना चाहिए। तो गांधी जी भी विनोद करते थे। दिन में 24 घंटों में करीब करीब एक आध घंटा तो थोड़ा थोड़ा करके एक आध घंटा तो हंस लेना चाहिए। हास्य स्वास्थ्य का बिल्कुल निकट का साथी है। मैंने प्राचीन कहानी सुनी है कि एक बार हाथी मरकर यमपुरी पहुंचा तो यमराज जरा फ्री बैठे थे। विनोद करने के लिए यमराज ने हाथी को कहा कि अरे इतना बड़ा धरती पे गया, कम वक्त कुछ सत्कर्म नहीं किया, कुछ नहीं किया। हाथी ने कहा हजूर मैं तो क्या, मेरे से बड़ा तो मनुष्य है, वो भी ऐसे ही आ जाते कोरे तो मेरी क्या बात का। बोले मनुष्य कहाँ बड़ा, मनुष्य तो तेरे एक पैर के हिस्से में तोले तो दो चार मनुष्य तुल जाए, तू तो कितना बड़ा है, मनुष्य तो इतना नन्ना। बोले महाराज देखने में नन्ना है लेकिन हम जैसों के भी छाती पे चढ़ जाता है मनुष्य, मनुष्य बहुत बड़ा है। बोले क्या बड़ा है, कई देखे मनुष्य आए। बोले मुर्दे आए होंगे, मुर्दे, कोई जिंदा बंदा नहीं आया होगा। जिंदे मनुष्य को बुलाकर देखो तो पता चले। यमराज ने दूतों को कहा कि जाओ कहीं खेत खली में कोई जिंदा मनुष्य को अनऑफिशियली चुपके से उठा लाओ। घर में से तो नहीं उठा सकते, खेत खली में। एक 32 साल का जवान अपना खली में सोया था चौकी करने को, उसका खटिया उठाया रात को नींद नींद में डुंग 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 डुंग। जब ऊपर की शीतल हवाएं लगी तो उस बंदे की आंख खुली और देखा कि खटिया के चारों तरफ भयंकर जमदूत, साहब से भी चपरासी ज्यादा रुबाब मारते जयराम जी के, साहब से भी साहब के नीचे अनुचरण ज्यादा रुआ। देखा ये यमदूत है, यमराज से तो समझ लेंगे आता जोड़ी करके, इनसे बातचीत किया तो ये गड़बड़ करेंगे। जरा खटिया यूं कर दिया तो हड्डियां कौन सी कहां जाएगी, कौन सी कहां जाएगी पता नहीं। आदमी समझदार था, थोड़ा सत्संगी था, उसने धीरे से जेब से कागज निकाला और कुछ लिख दिया अटकल से और लेट। खटिया यमराज के यहाँ छोड़कर यमदूत दूसरे काम में लग गए। नए यमदूत को चिट्ठी पकड़ाई, यमराज के पास गई चिट्ठी कि आने वाले आदमी को मैं स्वर्ग का चेयरमैन बनाता हूँ, इनसे पूछकर डिसीजन लिया करें। भगवान आदि नारायण सही करता। यमराज अटेंशन में आ गए, उनको बैठा है। अब कोई भी आए मर के इसने फलानी फर्म में पैसे लोगों के रखकर विधवा के पैसे खा गया, इसको कौन से कुंभी पार्क में, 80 पार्क में, रव रव नरक में, किस में इसको भेजे। बोले नहीं इसको वहीं कुट भेज दो, इसने ये पाप किया है, माँ बाप को सताए, ऐसा ऐसा किया, इसको क्या दंड दे। बोले वहीं कुट भेज दो। जो भी आए बैंकुट 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 में भीड़ हो गई। भगवान ने जांच करा कि क्या बात है कि इतने ब्रह्मज्ञानी धरती पे आ गए कि सारे उनकी कथा सुन के बैंकुट के अधिकारी हो गए। अगर ब्रह्मज्ञानी होते तो मेरा उनके साथ सीधा एक्सचेंज के साथ संबंध होता है, इतने ब्रह्मज्ञानी मैंने भेजे नहीं है और यहाँ बैंकुट फुल हो रहा है, क्या बात है। यमराज ने संदेशा भेजा कि वो ब्रह्मज्ञानी गुरुओं की कथा के कारण लोग वैंकुट में नहीं पहुंच रहे, आपने जो भेजा है ना चेयरमैन, वो चेयरमैन ऑर्डर करता है सबको वहां भेज दे। भगवान ने देखा कि मैंने तो भाई कभी चेयरमैन भेजा नहीं, ये क्या बात है। चलो साइड पे मुआवजा ले, उधर ही देखे। भगवान आए तो यमराज से पूछा कौन सा चेयरमैन। बोले वो बंदा मंदिर को बुलाया कि भाई मैंने तुझे चेयरमैन पद पे कब भेजा। बोले प्रभु आपकी साइन है। तो बोले ये तो साइन मैंने तो नहीं की। कि भगवान आपने नहीं की ये कैसे बोलते हो, आप ही का वचन है ईश्वरो सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, हाथ बिचारे क्या करते, सब आप ही तो करवाते। अगर आप बोलो मैं झूठा हूं ठीक है मैं मान लेता हूं, तो फिर आपके गीता भी लोग झूठी मानेंगे, मानव जात का हरास हो जाएगा जैसे आपकी आज्ञा। और रामायण में भी लिखा है उमा दारू योषित की नाई सभी करावत राम गोसाई। मनुष्य तो कठपुतली अंतर्यामी राम करवाता है, तो उसी ने करवाया, मैंने लिख लिया, इस हाथों ने लिखा है, आपने लिखवाया। भगवान बोलता है, अरे जिंदे मनुष्य है, ठीक है जो हो गया, अब उनको मैं नरक में भेजता हूं नीचे, और अव्यवस्था हो जाएगी और तुम को खेत खली में पहुंचा देता हूं। बोले भगवान पहुंचा दो तो पहुंचा दो, इसके बाद कोई सत्कर्म नहीं करेगा, मैंने अपने लिए नहीं किया, शुभ किया, आपके धाम में भेजे, और उसके बदले में आपका दर्शन करने के बाद फिर वो नरक में जाए तो आपके दर्शन का फल क्या होगा? प्रभु आपकी इज्जत का सवाल है, चिंता मुझे ये है कि आपके नाम का बट्टा न लग जाए। भगवान ने कहा अच्छा भाई, वो उठे बैठे रहे, तुसी खेत खली में जाओ। बोले इतने लोगों को वैकुंठ भेजाने वाला फिर वो बैलों को करता रहे तो फिर शुभ कर्म कौन करेगा आगे? यमराज और चित्रगुप्त टकुर टकुर देखते रह के वहां। तो भगवान ने कहा अच्छा तू यहां होगा तो गड़बड़ी होगी, तू भी चल वैकुंठ में, यहां का पोस्ट डिपार्टमेंट तो साफ सुथरा रहे। बोले मैं कैसे चलूंगा, इस हाथी की कृपा से मैं आया हूं, पहले उसका ऑर्डर कर दीजिए। यमराज ने कहा भाई हाथी चलो, फिर सूंड उठा के कहता है जयराम जी की जय, श्री राम है जिंदा मनुष्य। अब ये कहानी हो चाहे घटना हो, लेकिन इस कहानी की शक्ति और कल्पना भी तो जिंदे मनुष्य की है, जयराम जी की। एक भक्त था, अरे जिन महापुरुषों की वाणी से हृदय में इतनी शीतलता आनंद आता है, ऐसे दिन कब आएंगे कि गुरु महाराज की सेवा करने का मौका मिलेगा। बहुत दिन के संकल्प, गुरु महाराज और उनके मित्र महाराज भोजन कर रहे थे और भगत खड़ा था कि मुझे सेवा मिले। अच्छा भाई तू क्यों खड़ा है? बोले गुरु जी सेवा बने। अच्छा ले ये पंखा उठा, और संत लोग खा रहे हैं, हम भी खा रहे हैं, ये भी खा रहे हैं पंखा हाँ, चलो उनको सेवा देनी थी। वो पंखा हाँकने को उसको सेवा मिल गई, गदगद हो गया। मैं कितना भागशाली कि जब संतों की सेवा में पंखा हाँक रहा हूं, आ करके धड़ाक लेके उनकी ताली पे गिर पड़ा। अब सेवा किया कि मुसीबत किया, उनका तो खाना खराब हुआ और तेरी आंख में ताली की कांदी लग गई। सेवा करना है तो वहां भावुकता नीचे ही, वहां सेवा का भी। पंचतंत्र नाम के ग्रंथ में एक कथा आती है कि राजा शिकार करने गया और एक रीछ मिला, और पूर्व का वो मित्र था, दोनों एक दूसरे को देखकर आकर्षित हुए। राजा पशुओं की भाषा जानता था कि पशु लोग मानवीय भाषा बोलते जैसा जो भी कुछ होगा। दोनों ने एक दूसरे को पहचान लिया कि यार हैं अपन पुराने, भले तू छोटे कर्मों से रीछ बना और मैं कुछ अच्छे कर्मों से राजा बनाऊं, लेकिन है यार जिगरी दोस्त, मिले बड़ा प्यार से मिले, जैसे दो दोस्त अगले जन्म में मिले ऐसे रीछ और राजा मिले। रीछ ने कहा अब मैं आपकी सेवा करूंगा, तुम्हारे 10 तीर कमान वाले सिक्योरिटी में खड़े रहेंगे, तभी भी लोग कोई ना कोई आके सिर खपाएगा, मैं रीछ आपके इर्द गिर्द राउंड मारूंगा, मजा लेके कोई चिड़िया भी पटक जाए, मैं आपका बॉडीगार्ड बनूंगा, आपके महल में आपकी सेवा में रहता हूं। दोनों ने तय कर लिया। हाँ वो राजा जब शयन करे तो रिच राउंड मारे रेड ले, अब कौन आता है रिच को देखकर कौन आएगा? राजा की नींद तनिक भी बिगड़े नहीं। दोपहर का समय था, श्राद्ध के दिन थे, राजा ने खाई खीर। 50 साल के बाद तो सांस लेने में फिर नाक से सांस लेते और मुंह से फूंकते हुए छोड़ते हैं, तो खीर का जो मिठास था वो भी थोड़ा फूंक के कण बाहर रहे तो मक्खियों को पता चल ही जाता है, तो राजा के होठों के इर्द गिर्द मक्खियां अपना खीर का भंडारा करने लगी। उनको चाहिए कितना, रीच ने अपने हाथ से झटका मारा, मक्खियां भाग गई, लेकिन मक्खी की जात यूं करो गई, फिर आके वहीं बैठेंगे। एक बार इंच नहीं हूं झटका मारा, मक्खी भागी, फिर मक्खी आ गई, दूसरी बार मारा, तीसरी बार, चौथी बार। इसको लगा कि इन रंडों को पता नहीं चलता कि मेरा मित्र सो रहा, उनकी नींद खराब रही हो रही और मैं उनका अंगरक्षक, मेरे होते हुए राजा साहब की नींद ये मक्खियां खराब करे। फिर मक्खी बैठे, फिर झपट मारी ऊपर से, दो पांच दस बार मक्खियों को भगाए, लेकिन वो तो आ गया अपने स्वभाव में, तलवार पड़ी थी मयान में, खींची मयान से तलवार, मक्खियां भी क्या समझती है, दोनों हाथ से जोरों से दे मारी मक्खियों को, मक्खियां तो पहले ही उड़ गई, राजा की गर्दन कट गई। भाव तो उसका अच्छा था, भाव राजा की गर्दन काटने का नहीं था, लेकिन विवेक की कमी थी। उसने तो अपने मित्र का गला काटा, मरने वाले शरीर को ही मारा, लेकिन विवेक की कमी के कारण हम अपने आप को ही मारते चले जा रहे हैं। एक जन्म नहीं, दो जन्म नहीं, पांच जन्म नहीं, पचास जन्म नहीं, हजार जन्म नहीं, लाख जन्म नहीं, चौरासी लाख जन्म नहीं, कितनी बार चौरासी लाख, कितनी चौरासियां हम अपने को मारते ही चले गए, क्योंकि मरने वाले शरीर को मैं माना, मिटने वाली चीजों को मेरा माना, वास्तव में हम मैं क्या है उसका पता नहीं किया। तो रिच पर तो हंसी आ जाती कि कैसा बेवकूफ है, मक्खियां भगाने के लिए तलवार उठाई और राजा का सिर काट दिया, लेकिन हम अपना सिर काट रहे हैं रोज, अपने आप को खपा रहे रोज। हमारे पास पहले 8000 की खरीदी हुई एम्बेसेडर गाड़ी थी शुरू शुरू में, फिर 2000 का इंजन बेचकर 6000 की गाड़ी और दूसरा मेटाडो का इंजन फिट किया था। फिर सूरत आ रहे थे तो हमारे सेवा में शिवलाल था, लंबी दाढ़ी सफेद 1.5 फुट वाली, मेरी तो छोटी है, डूटी डूटी तक पहुंचे ऐसी बात। तो गाड़ी में पर्दे बर्दे भी होते थे और हमारे लिए अहमदाबाद में जाए कि इधर सब भक्त लोग फूल हार खूब लाते हैं, तो देखते कि बापू नहीं स्वीकार करते तो भक्तों ने मिलकर सारे फूल हार हमारी गाड़ी को ऐसे सजा दिया कि दुल्हन। अब हमारी गाड़ी सूरत के तरफ निकली तो रास्ते में शाह आलम एरिया पड़ता है, शाह आलम का गीता मंदिर के बाद, वहां जरा ट्रैफिक जाम थोड़ा बहुत हुआ, तो गाड़ी सजी हुई थी दुल्हन की नाई और लगन गाड़ा था, शादी की मौसम थी तो गाड़ी तो जब गाड़ी हमारी थोड़ी स्लो हुई तो क्या पता 4-5 वो आ गए बहुचराजी वाले, दो उधर से दौड़ के आए, एक आधी इधर से आए, अब दो सामने से दौड़ के आए, गाड़ी के आगे खड़े हो गए और अपना नकली माल असली से ज्यादा, तो असली घाघरों से भी उनके नकली घाघरे बहुत बड़े होते, ये मेरे को तब पता चला। वो घाघरे चौड़ी करके गाड़ी रोको गाड़ी रोको गाड़ी रोको, गाड़ी रोको, हमने ड्राइवर को बोला भाई रोक रोक क्या बात। फिर दो उधर से हमारे तरफ, एक तो आगे गाड़ी के खड़ा हो गया गाड़ी रोक करके, दो शिवलाल की खिड़की के तरफ, तो शिवलाल ने खिड़की खोली तो उसने पर्दा हटा, अरे बोले इसमें तो लंबी दाढ़ी वाले महाराज हैं। तो हमारे तरफ दूसरा था, अरे बोले यहां भी एक दाढ़ी वाला बाबा बैठा है। आगे के इजरा बोले गाड़ी जाने दो। मैंने क्या रुकवाया क्यों? बोले हमको क्या पता कि इसमें बाबा लोग हैं, हम तो समझे दुल्हा है, कुछ मिल जाएगा। मैं क्या, दुल्हा तो जीवन में एक बार 5-25 या 50 बराती इकट्ठा करता है, और हम तो जहां जाते हैं वहां हरि नाम के हजारों बराती होते हैं। गाड़ी रोको। मैंने शिवलाल को बोला इनको दे दो दक्षिणा 25-50 रुपए के, तो ग्राहक है और क्या, वैसे ही खुशी बांटना हमारा उद्देश्य है, तो 25 रुपए में ये खुश हो जाते। 5 बंदे तो बेचारों को दे डालो, क्या फर्क पड़ता है इतने। तो मैं क्या, दक्षिणा लो, दुल्हा तो नहीं लेकिन दुल्हा मैं कर दो जरूर है, गाड़ी चलाने दो। नारायण हरि। एक अफिमची ने पूछा दूसरे अफिमची से, या सुलेमान मैं सुबह चौराहे पर मेरा मकान है, सुबह गैलरी में बैठकर देखता हूं कि बस चारों तरफ लोग भागते हैं, कैसे नादान आदमी है, चारों तरफ ट्रैफिक दौड़ती है, एक बाजू नहीं जाते, दो बाजू नहीं जाते, तीन बाजू नहीं जाते, चारों बाजू सब भागते। दूसरे अफिमची ने कहा तू बड़ा बेवकूफ है, आखिर तू तो अफिमची ना लायक, तुझे क्या पता, अगर लोग चारों तरफ न जाए, एक तरफ जाए, दो तरफ जाए तो धरती झुक जाएगी, इसलिए बेचारे चारों तरफ भागते। फिर चार अफिमची बैठे थे, जरा फूका फांके के बोले मैं प्राइम मिनिस्टर बनूंगा। उसने कहा पागल होगा, बेवकूफ, अरे मेरे होते हुए तू कैसे प्राइम मिनिस्टर बनेगा? मैं बनूंगा। उसने कहा तू कैसे बनेगा? पहले मैं बनूंगा, मैं ही बनूंगा। उसने बोला नहीं मैं बनूंगा। तीसरे ने कहा दोनों नालायक हो, जब तक मैं रिजाइन नहीं करता हूं तब तक तुम कैसे बन सकते हो? तीसरा अफिमची कहता है कि मैं रिजाइन नहीं करूंगा तब तक तुम कैसे बन सकते हो? हद हो गई। एक आदमी रेलवे स्टेशन पर गया, बोले साहब दिल्ली मेल कितने बजे जाता है? बोले 8 बजे। कितने बजे? कर्णावती कितने बजे जाती है? सुबह 5:30 बजे। शताब्दी कितने बजे जाती है? बोले 2:30 बजे। आगरा लोकल? बोले रात को 11 बजे। साहब तारंगा लोकल के लिए? बोले इतने बजे। और मेहसाणा लोकल? बोले इतने बजे। आपको कहाँ जाना है? बोले मेरे को तो केवल पटरियां पार करनी है। बोले धत तेरे की, पटरियां पार करनी है और सारी गाड़ियों का टेम खोपड़ी में भरता है। ऐसे ही तुम्हें भी तो ये संसार की पटरियां ही तो पार करनी है, इतना का है यार, खोपड़ी में भरो दुनिया भर को। बोले वर्ल्ड का नॉलेज होना चाहिए, होना चाहिए, थोड़ा बहुत रखो, लेकिन ये नॉलेज जिससे नॉलेज होता है उसका तो रखो, अपना तो पता नहीं। और दुनिया भर का ज्ञान ठासते जाते ठासते जाते ठासते जाते। एक था काका और दूसरा था भतीजा, सुन रहे हो ने? दोनों ब्राह्मण थे और श्राद्ध के दिनों में अपना छोटा सा गांव था, धंधा नहीं चलेगा तो पास के एक तहसील में चले गए, तहसील के एक बढ़िया गांव में, जैसे आदमपुर मंडी वैसे वाला इलाका। दोनों ब्राह्मण काका भतीजा ने ये प्रण किया कि अपन जो कमाएंगे आधा आधा। तो किसी ने कहीं श्राद्ध पर बुलाया, किसी ने कहीं बुलाया, एक दिन किसी शाहूकार ने श्राद्ध में बुलाया तो दोनों को भोजन कराया। फिर विदाई के समय बड़े बड़े फर्स्ट क्लास लड्डू, 11 लड्डू जिसमें अंदर चांदी का रुपया डला हुआ, ऊपर खसखस और चारोली और बादाम और पिस्ता भी अपना रंग दिखा रहे थे। उन ब्राह्मणों ने आपस में तय किया कि अपना आधा आधा तो है लेकिन ये लड्डू तोड़ने के लायक नहीं है, इसलिए भतीजा 5 तेरे 6 मेरे। भतीजा ने कहा काका आपने तो लड्डू खा खा कर दांत चबा दिए हैं, 6 मेरे 5 आपके। भाई मैं बुढ़ा हूं, ऐसे लड्डू तो अभी मिले हैं, तू तो जवान है, बाकी की जिंदगी में तुझे मिलते रहेंगे, 6 मेरे 5 तेरे। आखिर दोनों का मधुर कला, वो बोले 6 मेरे 5 तेरे, वो बोले 6 मेरे 5 आपके। काका ने कहा देख भैया अपन चलते अब अपने जो भाड़े पे कमरे लिए हैं वहां, योग विद्या करके अपन प्राण चढ़ा देते हैं, जो ज्यादा देर मरा हुआ रहेगा उसकी जीत, जो जीतेगा वो 6 खाएगा और जो हारेगा वो 5 लेगा। दोनों ने तय किया तो अपना प्राणायाम प्राणायाम करके ऊपर श्वास चढ़ा दिया और दोनों लेट गए। दोनों लेट गए, हल्की सी चेतना रहती है, बाकी पता नहीं चला। पड़ोस के लोग आए, देखा कि अरे ब्राह्मण ब्राह्मण हो ब्राह्मण। काका ने कहा कि अगर मैं जग जाता हूं तो हार हो जाएगी, भतीजा 6 खा जाएगा। भतीजा ने सोचा कि मैं जग गया तो काका जीत जाएगा, काका जीत जाएगा। और दोनों ने बराबर पक्का मौन ले लिया। देहाती लोगों ने देखा कि ये तो बेचारे ब्राह्मण, अरे बाप रे, अरे ये तो मरे गया बापड़ा ब्राह्मण भाया। और गांव के लोग बेचारे जो थे, उन्होंने इकट्ठा करके अपना कुछ लोगों को सामान बामान लाए और दोनों की यात्रा शुरू कर दी। दोनों के दो जनादे शुरू हो गए। अब काका सोचा कि तो शमशान में जाने की नौबत आई, अब यहां तक पहुंच गए, अब भी भतीजा डरेगा और बोलेगा। भतीजा सोचे कि काका अभी बोलेगा। ऐसे करते 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 जान बरात शमशान तक पहुंच गई। अनामी ननामी होती ना बरात, राम बोलो भाई राम, राम बोलो भाई राम। लड़के लड़की की शादी हो, बरात निकले न निकले, लेकिन मौत की बरात तो पक्का निकलती है। जयराम जी की क्या ख्याल है? टूट टूट वो बरात निकले चाहे न भी निकले। कोई कुंवारा हो वापिस नहीं शादी किया तो नहीं निकली बरात, लेकिन आखिरी मौत की बरात तो निकलनी निकलनी है। तो उन चाचा और भतीजा की बरात निकल चले। रास्ते में शमशान के पहले कहीं रखा जाता है, सुगन किया जाता है, कुत्तों को कुछ डाला जाता है। अब काका ने कहा कि एकदम नजीक पहुंचे। भतीजा सोचा कि काका अब बोले, काका सोचा कि भतीजा अब बोले। ऐसे करते करते शमशान के भीतर पहुंच गए। लकड़ियां तुल रही, वो भी आवाज आया, लकड़ियां जमा दी गई। अब हमारे जनादे को रखा, ये भी पता चला। अब चाचा बोलता है तो मर गए भाई, लेकिन जैसा मैं डर रहा हूं ऐसा वो भी तो डरेगा, उल्लू का पट्टा जाएगा कहां। ऐसे करते करते वो सुला दिया। हाँ महाराज, फिर क्या हुआ? घास बास रख दिया गया। अब बोले जाओ, बाकस ले आओ। और घास के पूड़े को आग लगती है, तो बाकस का जब आवाज सुना, काका ने सोचा न जाने उधर करते कि इधर करते, अब अगर थोड़ा भी छुआ दिया तो सफेद बाल तो पके हुए ऐसे ही पक जाएगा, अब क्या करें। देखा एक दो सेकंड और भी देख ले, भतीजा उठे, लेकिन देखा कि भतीजा तो चाचा का भी चाचा है। तो चाचा बेचारा ने मन मना लिया, बोले जाग भतीजा, 6 तेरे 5 मेरे, 6 तेरे 5 मेरे, जाग भतीजा जाग। ओ लाने वाले भी 11 आदमी थे, 4 4 8 और 3 फालतू थे। उन्होंने देखा कि ये तो ब्राह्मण मरकर फिर भूत हुए, अपन लोग 11 हैं, 6 वो मार खाएगा, 5 को वो पकड़ेगा। ओ भागे वो भागे, किसी की जूती रही किसी की पट कीड़े, ओ भागे जाए भागे, ऐसे दौड़े ऐसे दौड़े दौड़े दौड़े, ब्राह्मण पीछे भागे वो आगे, भागे जाए भागे जाए भागे भागे जाए, किसी का वो गिरे कुछ हुआ, भाग गया जाए भागे भागे भागे। करते करते अपने अपने घरों में झोपड़ों में घुस गए। और ब्राह्मण ब्राह्मण अपने घर में गए, ले भतीजा 6 तेरे 5 मेरे, वो 11 लड्डू खोजे, 11 लड्डू में से एक भी लड्डू नहीं। पड़ोस में गांव में जाए तो सब लोग छुप जाके भूत आए भूत आए भूत आए भूत। बड़ी तकलीफ हुई। आखिर ब्राह्मणों ने एक आध दिन के बाद जांच करवाई कि भाई हमने ऐसी ऐसी शर्त लगाई थी, वो 11 लड्डू कहां गए। लोगों ने बोला जिसके घर में मौत होती है बना बनाया खाना नहीं रखा जाता, वो तो हम उठाकर ले गए और ब्राह्मण कुत्तों को खिला दिया। ओ जाग भतीजा, 6 तेरे 5 मेरे, न 6 रहे न 5 रहे। ऐसे ये जीव कल्पना कल्पना में क्या क्या पाता है क्या क्या खोता है, फिर भी सब पाकर कुछ नहीं पाता है, अकेला चला जाता है। और सब खोकर भी कुछ नहीं खोता, अगर आत्मज्ञान का सत्संग सुना है तो सब मौजूद ही मौजूद। एक लड़का था,
वो अपनी माँ को बोलता था कि माँ माँ मुझे छी करनी है। बोले इतना बड़ा बैल हुआ छी छी बोलता है, मेहमान आएंगे क्या समझेंगे। अपन कोड वर्ड कर देते, जब तुझे छी करनी हो पेशाब करना हो तो मुझे बोल देना कि मुझे सीटी बजानी है, मैं जानू और तू जाने, कोड वर्ड में काम हुआ करेगा बिटवा, समझ गए जयराम जी की। अब कुछ दिन तो ये कोटवर्ड में गाड़ी चली, एक दिन माँ एकाएक ननिहाल चली गई। अब तो बच्चे को किशोर को खिला दिया बाप ने, खाया पिया, हाँ बेटे को चले जाओ उड़ाई सोए। अब झाड़ो के दिन बोले पापा पापा, बोले क्या है, बोले बोले पिताजी मुझे सीटी बजाना है। बोले बिट्टू यार सीटी बजाना, अभी रात को मेहमान आए सारे, देर को दबाच के सो गया, थोड़ी देर हुई ना, बोले पापा मैं तो सीटी बजाऊंगा। बोले मेरे बाप अभी सीटी नहीं बजाई जाती, मैं कल तुझे दो दो लेके दूंगा, तू दो दो बजाइयो, बड़ी हंसिया बजाइयो। बोले नहीं मैं तो अपनी बजाऊंगा। बोले तू अपनी भी बजाना, मैं भी ले दूंगा, सब बजाना, लेकिन कल सुबह बजाना। अब उसको पता नहीं कि कोटवट क्या होता था। सोजा मेरे लाल सोजा, हाथ घुमाया सोए, लेकिन वो सर्दियों के दिन थे, अब कैसे वो सोने जाएगी। थोड़ी देर में बोले बाबा मैं तो सीटी बजाऊंगा बजाऊंगा और बजाऊंगा। बोले मैं तेरा गला घोंट दूंगा, बजाना सीटी, मेहमान सो रहे सबकी नींद खराब हो जाएगी, सीटी मत बजा। थोड़ी देर चुप हुई, फिर वो रोया, बोले कुछ भी हो जाए मैं तो सीटी बजाऊंगा तभी नींद आएगी। बोले अच्छा मेरे बाप तू भी गजब का निकला, मेरे कान में ही बजा दे। अब वो ठहरा हुआ काफी देर का था छोरा, और चोरा तो चोरा था छोटा सा बेचारा। बोले क्या करता है क्या, बोले मैं कब का बोल रहा हूं मैं क्या। इब्राहिम लिंकन प्राइम मिनिस्टर था, राष्ट्रपति था अमेरिका का, फिर भी ऐसी छोटी मोटी जोक्स की किताबें रखता। कभी एक दो घंटा पार्लियामेंट में बोलते चलते कुछ थोड़ा उदास या खिन्न हो गया या थक गया हो तो चुटकी से चला जाता हूं अपने कमरे में और देखता ऐसी ऐसी किताबें जिसमें ऐसे गपशप लगे हो लेकिन हंसी आए मौज आ जाए। तो क्योंकि प्रसन्नता भी जीवन की मांग है, खुशी भी मांग है, इसलिए मैंने उस नन्हे बच्चे की बात लाकर भी आपका थोड़ा ब्लड सर्कुलेशन बढ़िया रहे। एक शराबी शराब के नशे नशे में खड्डे में गिर गया, बरसात के दिन थे, बिजली चमकी, बोले खुदा ताला तू भी बड़ा चालाक है, जब मैं खड्डे में गिरा तभी तू फोटो लेता है। मजे से कुर्सी पे पी रहा था तब फोटो नहीं लिया, मैं खड्डे में गिरा तभी तू फोटो लेता है। घर में झगड़ा हुआ पति पत्नी में, अले संसार में कुछ नहीं है, मैं तो शादी करके फंस गई, आए थे मुन्ना मुन्नी दोनों खेल रहे थे। मुन्नी ने कहा ठहर मैं पानी पी के आती हूँ भैया। वो पानी पीने गए तो देखा कि मम्मी पापा लड़ रहे हैं, वापस आ गए। बोले क्यों जल्दी आ गई। बोले मम्मी पापा लड़ रहे। बोले क्या बोल रहे थे। बोले मम्मी बोलती मैंने बड़ी गलती की शादी करके, मैंने तो अपनी जिंदगी झंझट में डाल दी, अकेली थी तो बड़ी सुखी थी। पापा बोलते रहन तूने क्या गलती की, गलती तो मैंने की, मैं तो कीचड़ में गिरा फंस मरा हूं, मैंने बड़ी गलती की। मुन्ना बोलता है मेरे को पूछ के करते तो ऐसा हाल नहीं होता। मेरे को पूछे बिना दोनों ने शादी की, अब दोनों को रोने दे, चलो अपन दोनों भाई बहन खेलते। जयराम जी की।